काचित् सिद्धेस्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं मुनिसुवयदेशयरं पणमिय मुनिसुवयं जिणं देवं संकममणुगमिणं जहासुवं वर्णय सामो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार है, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 376 पर आ गए, 376। कल क्या देखा था देख लेते हैं। अनुभाग संक्रमण की बात चल रही है, प्रकृति संक्रमण और स्थिति संक्रमण हमने देख लिया। यह अनुभाग संक्रमण 374 से शुरू होता है। अनुभाग संक्रमण में पहले स्पर्धकों की बात उन्होंने बता दी है, जघन्य स्पर्धक वगैरह वगैरह, यानी सभी कर्मों के जो जघन्य स्पर्धक, उसको आदि स्पर्धक कहा, प्रथम स्पर्धक कहा। प्रत्येक कर्म के अपने अपने में अपने होते हैं, परंतु उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी अपेक्षा से उसमें समानता कही है। तो यहां बताया कि सभी देशघाती स्पर्धक जो है, स्पर्धक नहीं प्रकृतियां, सभी देशघाती प्रकृतियों का जो पहला स्पर्धक है वो समान है कहा था। अघाती के भी पहला जो आदि है वो भी समान है। बाद में बताया कि सम्यक तो प्रकृति का जो जघन्य स्पर्धक है वो भी उनके समान है। यहां तक तो बात हुई थी। अब जो सर्वघाती है, सर्वघाती का जो आदि स्पर्धक है, सर्वघाती में वहां मिथ्यात्व को छोड़ा था, तो सम्यक मिथ्यात्व को रखा था, वो केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण आदि का जो पहला स्पर्धक है, आदि स्पर्धक है, वे भी सबके समान है। मिथ्यात्व का जो पहला स्पर्धक है, जहां सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धक अनंत होते हैं, वो उसमें समाप्त होते हैं, और उसके आगे वाला जो ऊपर का स्पर्धक है मिथ्यात्व का है, वो सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से या ऊपर के भी स्पर्धक से वो अनंत गुना है। ये बात हमने कल विस्तार से देखी थी, ऐसे अलग अलग अनुभाग की अपेक्षा बातें बताई थी। उसके बाद यहाँ अर्थपद बताया था उन्होंने, अर्थपद यानी ये जो संक्रमण है, अनुभाग संक्रमण, उसके संबंध में जो कोई नियम है, जो कोई उसके विशेषताएं हैं, उसको बताने वाला, उसको अर्थपद कहा था 375 पृष्ठ पर। तो अनुभाग संक्रम किसको कहना, तो अनुभाग का अपकर्षण होना, उत्कर्षण होना, या एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप हो जाना, उसको भी अनुभाग संक्रमण कहा था। उसमें एक बात नियम बताया था कि जो पहला स्पर्धक है उसका अपकर्षण नहीं होता। फिर बताया तो वहां से लेकर अनंत स्पर्धक जो जघन्य निक्षेप कहलाते हैं उनका भी अपकर्षण नहीं होता। उसके ऊपर जो अति स्थापना है उसका भी अपकर्षण नहीं होता। इस प्रकार से आदि स्पर्धक से लेकर जघन्य निक्षेप और अति स्थापना मिलकर जो अनंत स्पर्धक होते हैं, वहां तक के स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होता है, उसके ऊपर के स्पर्धकों का अपकर्षण होता है। अब 374 पर अल्प बहुत्व का कथन किया था। तो अल्प बहुत्व में हमने देखा था प्रदेश गुणहानि स्थानांतर स्तोक है। प्रदेश गुणहानि कहो या केवल गुणहानि कहो, एक ही बात है, क्योंकि प्रदेशों की संख्या जहां आधी होती है उसको प्रदेश गुणहानि कहते हैं। अनुभाग जो है आदि स्पर्धक से अनुभाग ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है अनुभाग, परंतु उनमें जो वर्गणाओं में परमाणुओं की संख्या है वो क्रम से हीन होती है, एक एक चय घटती चली जाती है। जहां पर आधी हो जाती है वहां तक के स्पर्धकों की जो संख्या है उसको कहेंगे सबको मिलकर एक गुणहानि, जो अनंत में होती है। एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक है। अभी अरविंद भाई ने लिख के लाए ना, एक गुणहानि में कितने स्पर्धक है, तो अभव्यों से अनंत गुणे स्पर्धक है। अभी था ना आपके चिट्ठी में, आपको याद है कि नहीं, आपने ही लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, उनके साथ देखना, 16वां भाग है। यहाँ लिखा था ना कि प्रदेश गुणहानि में अनंत स्पर्धक होते हैं, जिसका प्रमाण अभव्यों से अनंत गुणा है, फिर भी जघन्य निक्षेप से सबसे कम है। क्योंकि अभी हमने यहाँ दूसरे पॉइंट पर जघन्य निक्षेप उससे अनंत गुणा है ऐसा कहा था। तीसरे पॉइंट पर जघन्य अति स्थापना अनंत गुणी है, ये कल देखा था, फिर हम दोबारा जरा देख लेते हैं। यह अनुभाग के संक्रमण की बात चल रही है। चौथे पॉइंट पर उत्कृष्ट अति स्थापना अनंत गुणी है, हमने देखा ना पहले जघन्य निक्षेप है, फिर बीच में अति स्थापना छोड़ी थी, फिर निक्षेप उतना ही रहेगा और अति स्थापना बढ़ती बढ़ती उसकी जो लिमिट है वहां तक चली जाएगी, तो उत्कृष्ट अति स्थापना अनंत गुणी है। फिर उत्कृष्ट अनुभाग कांडक विशेष अधिक है, हमने देखा था ये अनुभाग कांडक होते रहते हैं, स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात होता है, उसमें कितना बड़ा कांडक है, कितने स्पर्धकों का एट ए टाइम घात होता है उसको अनुभाग कांडक कहते हैं, उतने नंबर ऑफ स्पर्धकों को अनुभाग कांडक कहते हैं। तो ये जो उत्कृष्ट अनुभाग कांडक है वो उससे भी अनंत गुणा है, सॉरी विशेष अधिक है, अति स्थापना से विशेष अधिक है। उसके आगे उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है, क्योंकि अपकर्षण की अपेक्षा अंतिम स्पर्धक का जो अति स्थापना रूप स्पर्धक है और जिसका निक्षेप हुआ है, मात्र इन दोनों का ही अभाव है। यानी निक्षेप कहाँ कहाँ है, जिसमें से नीचे आए उसको हम कहेंगे कि उसमें से आए, तो उसमें तो निक्षेप नहीं होगा, नीचे अति स्थापना में भी निक्षेप नहीं है, उसके नीचे सर्वत्र निक्षेप है, तो ये सबसे उसका उत्कृष्ट निक्षेप कहलाएगा। अब कहते हैं अपकर्षण किस किस में से किया जाता है, तो उत्कृष्ट स्पर्धक में से भी किया जाएगा, तो नीचे कौन कौन से स्पर्धकों में से अपकर्षण होगा, तो जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना को छोड़कर जो वहां निषेक स्थित है उसके ऊपर, निषेक नहीं स्पर्धक, उन सभी स्पर्धकों में से अपकर्षण होगा अंतिम स्पर्धक से, इसलिए हमने निकाला था, इसलिए शब्द निकाला था कलम ने। तो कहते अंतिम स्पर्धक से लेकर कहां तक, जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना के ऊपर का स्पर्धक, वहां तक के स्पर्धक जो है उनका अपकर्षण किया जाता है। अब यहां से पढ़ेंगे हम, ये तो कल तक का विषय हुआ। अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों की अपेक्षा जघन्य निक्षेप तुल्य होकर स्तोक है। क्या कहते हैं, अपकर्षण की अपेक्षा भी जघन्य निक्षेप और उत्कर्षण की भी अपेक्षा जघन्य निक्षेप, ये स्तोक है। स्तोक है ने अल्प है। उत्कर्षण होकर वहां कहां तक, जैसे हमने देखे थे निषेकों में जब देखते हैं तो वहां तो आबाधा उदयावली उसका प्रश्न हो जाता है, यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहां जितना जो उसका अनुभागों में देखना है ना, तो नया बंद होता है उसकी अपेक्षा से उत्कर्षण भी होगा वहां पर, तो मान लेते यहां से यहां तक ऐसे बंद हुआ, तो यहाँ के परमाणु अति स्थापना छोड़कर कहाँ तक ऊपर चले जाएंगे, उसकी अपेक्षा लेना है। यहाँ भी मान लेते हैं, जगन्य से लेकर उसने भी बंद किया है, तो अपना अपना वहाँ निक्षेप और अति स्थापना जो छोड़कर, नीचे के निक्षेप और अति स्थापना छोड़कर उसका उत्कर्षण होगा, या ऊपर से भी आते हैं तो यहाँ के जो स्पर्धक है उसका नीचे निक्षेपण होगा, तो उसकी जघन्य निक्षेप और जघन्य अंतिस्थापना दोनों के लिए समान है। हाँ देखो, जघन्य निक्षेप तुल्य बताया, अभी अतिस्थापना की बात नहीं की है, पर अपकर्षण की अपेक्षा जघन बंधे की अपेक्षा होती है ना। हाँ, स्पर्धक में भी। हाँ, अनुभाग का बढ़ना। हाँ, परंतु स्थिति के लिए तो बंधे की अपेक्षा थी, अब यहाँ अनुभाग बढ़ने के लिए वहां भी होनी चाहिए, परंतु देखते हम आते हैं कहीं बात। यह उत्कर्षण का अलग कुछ बताया नहीं है ना। स्वामित्व में, हाँ कहाँ पर, लास्ट लाइन, अनंत गुणों, वो तो हम पढ़ेंगे अभी। देखो, अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों की अपेक्षा जघन्य निक्षेप तुल्य होकर स्तोक है। अपकर्षण की अपेक्षा जघन्य अतिस्थापना व उत्कर्षण की अपेक्षा अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अतिस्थापना की अंतिम स्पर्धक शलाका भी, तथा उत्कर्षण की अपेक्षा उत्कृष्ट निक्षेप तुल्य व अनंत गुणा है। यानी ये सारे बारे बातें तुल्य है और अनंत गुणा है कहते। अब इसके लिए जो नीचे, ये नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिला है फुट नोट में। देखो, ऊपर जो प्राकृत जहाँ समाप्त होता है वहाँ अंतिम लाइन में जो स्टार जैसा है ना, फूल जैसा, वो चिन्ह जहाँ नीचे है, नीचे से छठी लाइन में, वहाँ से पढ़ेंगे। उक्कड़नाय परुवणा, उत्कर्षण की प्ररूपणा करते हैं। चरिम फद्दयम न उक्कड़िंजदि, चरम जैने अंतिम स्पर्धक, उसका उत्कर्षण नहीं होता। अपकर्षण में हमने क्या देखा था, आदि स्पर्धक का अपकर्षण नहीं होता, क्योंकि हमने आदि उसी को कहते कि जिसके नीचे कोई स्पर्धक नहीं है, तो वहां अपकर्षण होकर कहां जाएगा, तो उसका अपकर्षण नहीं। उत्कर्षण में जो चरम है, अंतिम ऊपर का जो स्पर्धक है, लास्ट वाला, उसका उत्कर्षण नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पॉसिबल है ना अनुभाग, तो उसका उत्कर्षण नहीं होता। आगे, द्विचरम फद्दयम पी न उक्कड़िज्जति, द्विचरम स्पर्धक भी उत्कर्षण उसका नहीं होता। हमने नीचे से क्या देखा था, अपकर्षण, अपकर्षण में क्या रूल देखा था, पहला स्पर्धक का अपकर्षण नहीं होता, दूसरे का नहीं होता, तीसरे का नहीं होता, ऐसे जघन्य निक्षेप अनंत छोड़ दो, उसका भी अपकर्षण नहीं होता, उसके ऊपर जघन्य अतिस्थापना भी अनंत है, उसका भी अपकर्षण नहीं होता, उसके ऊपर के स्पर्धक का अपकर्षण होता है। अब यहाँ उत्कर्षण की बात चल रही है, यहाँ नया बंध की बात नहीं उठाई है। तो उत्कर्षण में क्या होता है कि चरम स्पर्धक का उत्कर्षण नहीं होगा, द्विचरम का नहीं होगा, एवं अनंतानि फद्दयानि ओसक्की उण तम फद्दयम उक्कड़िज्जति, यानी इस तरह से अनंत स्पर्धक को उनको उल्लंघ कर वो नीचे का स्पर्धक उसका उत्कर्षण होगा। सौवत्थो जहन्नो निखेवो, अब जो उत्कर्षण होकर जहां वो डाला जाता है वो जघन्य निक्षेप सबसे थोड़ा है। वैसा ही रूल हम जब हमने अपकर्षण में नीचे की ओर से देखा था, उत्कर्षण में ऊपर से वैसा ही सोचना है। जहन्य अहिच्छावना अनंत गुणा, अपकर्षण में हमने आदि स्पर्धक से लिया था, अब यहाँ ऊपर की ओर से देखना है। उत्कर्षण होकर कहाँ निक्षेप डाल ले जाते हैं, तो वे जो स्पर्धक है वो भी अनंत है, कम है सबसे परंतु वे अनंत है। उससे नीचे जहाँ अति स्थापना कहलाते जिसमें निक्षेप नहीं होता, वो उससे भी अनंत गुणा है। जघन्य अति स्थापना भी अनंत गुणा है। उपकसव निक्षेप वो अनंत गुणा। अभी उत्कृष्ट निक्षेप, उत्कृष्ट निक्षेप यानी नीचे से लेकर ऊपर तक कहाँ कहाँ तक निक्षेप होगा अपनी अपनी अति स्थापना छोड़कर, तो उसको उत्कृष्ट निक्षेप कहने में आएगा, वो अनंत गुणा है। उपकसव बंधो विशेष सहयो, ये बंध की बात आई। उत्कृष्ट बंध विशेष अधिक है, यानी जितने में निक्षेप हुआ है उससे बंध ज्यादा है, बंधने वाले स्पर्धक ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पर्धक जो बनते हैं उसकी संख्या ज्यादा है। ओकड़नादो उपकड़नादो जघन्य इच्छावना तुल्ला, उत्कर्षण और अपकर्षण में जघन्य अति स्थापना दोनों की तुल्य है। जघन्यो निक्षेप वो तुल्लो, और जघन्य निक्षेप भी तुल्य है। उसका ऊपर है इसका नीचे, अपकर्षण का नीचे देखा था, उत्कर्षण का ऊपर देखना। ये कषाय प्रभृत और जय धवल में लिखा है। आगे कहते चरिमम नो वट्टी जदि जाव अनंतानी फड्डगाणी ततो उक्कस्य उक्कडई वट्टई एवं वट्ठनायो। यही बात फिर दोबारा बताइए। यानी बंध जो है वो अधिक विशेष अधिक है, विशेष अधिक है। हाँ, चरम हम उसको ही कहेंगे ना, जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसी को चरम कहेंगे। जैसे यहाँ आदि कहा, नया बंध में आदि, उसका नया बंधने वाला आदि में कोई भी वेरिएशन हो सकती है। चरम हम अनुभाग की अपेक्षा चरम किसको कहेंगे, जो मैक्सिमम पॉसिबल है। और नया समान होगा, नया बंधने वाला तो उत्कर्षण का सवाल नहीं है, कम होगा तो भी उत्कर्षण का सवाल नहीं है। परंतु विशेष अधिक क्यों, निक्षेप की अपेक्षा विशेष अधिक कहा, निक्षेप कहां तक है उसमें तो छोड़े थे ना, नीचे से अगर हम लेते हैं ऊपर से कहीं से भी, अपकर्षण या उत्कर्षण में, तो निक्षेप और अतिस्थापना छोड़कर उसको निक्षेप कहलाने में आएगा, और अतिस्थापना और निक्षेप सबको मिलकर बंध कहने में आएगा या सत्ता के निषेध कहने में आएंगे। समझ में आता है ना, निक्षेप यानी पूरी जितना बंध है, या पूरी सत्ता में जहां आदि से चरम तक जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्धक है उसमें से अति स्थापना में नहीं दिया जाता, निक्षेपों में दिया जाता है। तो निक्षेप प्लस अति स्थापना मिलकर टोटल संख्या होगी स्पर्धकों की, इसलिए वहां विशेष अधिक कहा। अब 377, इस अर्थपद के अनुसार प्रमाणानुगम की प्ररूपणा की जाती है। अब इसमें से प्रमाण बताएंगे। यथा घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा की यहां भी प्ररूपणा करना चाहिए, इसका की बिंदी जरा स्पष्ट करना। सम्यक्त्व का उत्कृष्ट संक्रम देशघाती होता हुआ द्विस्थानिक है। कौन से द्विस्थानिक हो गए, लतादारो। इसी प्रकार मनुष्यायु और तिर्यगायु के संबंध में कहना चाहिए। सम्यक मिथ्यात और आतप नाम कर्म का अनुभाग संक्रम सर्वघाती होकर द्विस्थानिक है। हुँ? सर्वघाती होकर द्विस्थानिक है। पर हमने तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में अकेला दारू वाला देखा था ना। स्त्री वेद और नपुसक वेद का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम सर्वघाती चतुस्थानिक है। सम्यक्त्व तो हुआ है, सम्यक्त्व चार संज्वलन। पहले तो उत्कृष्ट संक्रम की बात की थी, अब जघन्य संक्रम की बात कर रहे हैं। सम्यक्त्व चार संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य संक्रम देशघाती एक स्थानिक है। वो देशघाती प्रकृति है। स्पर्धक हो गए ना, स्पर्धक सभी है ना। देशघाती प्रकृति में स्पर्धक सर्वघाती देशघाती सभी है ना। हाँ, अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम सर्वघाती चतुस्थानिक है। देखो हम स्वामित्व कहेंगे ना तब ये शायद पता चलेगा। शेष कर्मों का जघन्य संक्रम सर्वघाती द्विस्थानिक है। विशेष इतना है कि वह मनुष्य आयु तिर्यक आयु का देशघाती है, यानी उसमें तो देशघाती ही होता है। ये तो अनुभाग जिसका जिस कर्मों का जितना होता है उसको उस अपेक्षा से लेना है अनुभाग में। उसमें ये ऐसा क्यों, ऐसा सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि हर एक कर्म की अपनी अपनी प्रकृति की विशेषता है। तो उसमें किसी के द्विस्थानिक ही है, किसी के चतुस्थानिक है। फिर उत्कृष्ट संक्रम और जघन्य संक्रम की अपेक्षा भी वेरिएशन बताया उन्होंने। जघन्य संक्रम बताया ना, सर्वघाती द्विस्थानिक। अब स्वामित्व की प्ररूपणा की जाती है। मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसके होता है, जो उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर एक आवली को बिता चुका है। क्योंकि उसके अनुभाग ज्यादा है ना, तो स्पर्धक ज्यादा है, तो उसमें से उसका संक्रमण भी होगा। जैसे हम निषेपकों में से देखते थे, सभी निषेकों में से अपकर्षण होता है, वैसे यहाँ सभी स्पर्धकों में से होगा, तब उत्कृष्ट अनुभाग स्पर्धक उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण कहने में आएगा। वह एक केंद्रीय हो चाहे अनेक केंद्रीय हो, बादर हो अथवा सूक्ष्म हो, पर्याप्त हो अथवा अपर्याप्त हो, नियम से मिथ्या दृष्टि हो, अभी इसमें अथवा नहीं कहा, उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाला लिया ना, तथा असंख्यात वर्षायुष्क मनुष्यों तिर्यंचों और मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले देवों को छोड़कर जो अन्य हो, यानी असंख्यात वर्ष मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले, असंख्यात वर्ष वाले तिर्यंचों में, या मनुष्यों में उत्पन्न वाले देवों को छोड़कर जो अन्य हो, उसके मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। इसी प्रकार शेष चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व 16 कषाय, नौ कषाय, असाता वेदनीय, अप्रशस्त नाम प्रकृतियों, नीच गोत्र और पांच अंतराय प्रकृतियों के भी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का कथन करना चाहिए। यानी जिसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है आवली काल के बाद, उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण होता है। उसके लिए ऑप्शंस बताए, असंख्यात वर्षायुष्क मनुष्य और तिर्यंच, और देवों में से जो मनुष्यों में आए हुए, उसमें भी जो लिए थे अनंतादि को छोड़कर, अब आगे 378 साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम किसके होता है? अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के द्वारा जो अनुभाग बांधा गया है। अब ये प्रशस्त प्रकृति है ना, वो अप्रशस्त थी तो उत्कृष्ट संक्लेश से उसका बंध होता था और मिथ्या दृष्टि के होता था। अब यहाँ जो साता वेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा या उसका संक्रम कौन करेगा? तो कहते अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के द्वारा जो अनुभाग बांधा गया है। बाद में भी बंद होता है ना, साता वेदनी का बंद कहाँ तक है? 13वें तक। तो 13वें वाले को क्यों नहीं लिया उत्कृष्ट अनुभाग? हाँ बहुत अच्छा, वहाँ अनुभाग बंद नहीं होता ना स्थिति बंद होता है। अनुभाग बंद कषाय तक ही होता है, तो सकषाय कहाँ तक है? सूक्ष्म सांप्राय तक। तो सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय है, मैक्सिमम पॉसिबल विशुद्धि है ना वहाँ सकषाय जीवों की, तो वहाँ साता वेदनीय का अनुभाग भी उत्कृष्ट बन जाएगा। तो सूक्ष्म सांप्राय वाला ज्ञानावरण को भी बांध रहा है, तो ज्ञानावरण का भी अनुभाग उत्कृष्ट बांधेगा कि नहीं बांधेगा? हाँ तो कैसा बांधेगा? जघन्य बांधेगा, जघन्य बांधेगा, मिनिमम पॉसिबल बांधेगा ना। एक जीव की अपेक्षा उसकी अपेक्षा अपने जघन्य होगा ना वहां पर। हाँ, और जघन्य भी जो कुछ होगा सभी जीवों में भी वो भी वहां पर ही होगा। क्यों? वो अप्रशस्त प्रकृति है ज्ञानावरण, तो उसका अनुभाग मिनिमम है, और साता वेदनीय प्रशस्त प्रकृति है उसका अनुभाग मैक्सिमम बांधेगा 10वें के अंत समय में। तो अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के द्वारा जो अनुभाग बांधा गया है, आवलिका अतिक्रांत यानी आवली के पश्चात, यानी वो बंधने के बाद एक आवली बीत जाने पर, 10वें के अंतिम समय में बांधा, अभी वो 12वें में गया, शपक लिया ना, उपशमक भी बांधेगा उससे इसका विशुद्धि ज्यादा है इसलिए इसको लिया है। तो आवली बीत जाने पर उसका संक्रमण करने वाले क्षीण कषाय अथवा संयोग केवली के उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। अनुभाग संक्रम में उसको असाता रूप नहीं बना देना, अनुभाग संक्रम में उसका जो बढ़ना होता है उसको लेगी हम। यश कीर्ति और उच्च गोत्र की प्ररूपना साता वेदनी के समान है। नारकायु के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम किसके होता है? जो उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर बंधावली को बिता चुका है वह अंतिम समयवर्ती तद्भवस्थ होने में एक समय अधिक आवली मात्र काल के शेष रहने तक नारकायु के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के योग्य होता है। देखो निषेकों में तो हमने उल्टा देखा था, स्थिति संक्रमण में क्या देखा था कि जो स्थिति है वो कितने है? जो 33 सागर में है। तो अपकर्षण की अगर अपेक्षा देखना है, उदीर्णा की अपेक्षा देखना है, तो अंतिम आवली और एक समय बाकी है तब उसकी स्थिति उदीर्णा होती है, परंतु वो स्थितियां कम होती चली जाती है और लास्ट में एक स्थिति में से उदीर्णा होती है। अब यहां क्या कहते हैं कि एक समय अधिक आवली काल शेष रहने तक उसके अनुभाग की उदीर्णा, जो अनुभाग का अपकर्षण आदि होगा, परंतु वो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होगा, यानी सभी स्पर्धक तो वहां पड़े हैं। निषेकों में तो एक एक निषेक पूर्ण नष्ट हो जाता है, स्पर्धकों में तो वो तो पूरे के पूरे नष्ट नहीं होते ना, उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग कम होते चला जाता है, तो ये वहां तक उसका हो सकता है उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वहां तक हो सकता है। हाँ, उसके बाद उसका संक्रमण नहीं हो नरका में। देख फिर पढ़ते मैं, नारकायु के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम किसके होता है? जो उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर बंधावली को बीत चुका है, बिता चुका है, यानी अभी बांधने का कार्य कितने काल तक चलता है, अंतर्मुहूर्त तक। परंतु अंतर्मुहूर्त में से एक आवली बीत गई ना शुरू होकर, तो उसका वो अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ है वो चलेगा। अभी यहाँ हम अपकर्षण की बात करेंगे, तो उसका अनुभाग कम होने की बात है। निषेक रचना में से कुछ अभी मत सोचो, उसको अनुभाग उसका घट सकता है। अब वहां से लेकर कहां तक, अंतिम समयवर्ती तद्भवस्त, यानी नरक का अंतिम समय, नरकायु का अंतिम समय, नरक में उस 33 सागर वाला है जो कुछ है, तो वहां उसका अंतिम समय लेना। अब यहां स्थिति की बात ही नहीं उठाई उन्होंने, तो उसका जो अंतिम समय है, तो उसके पहले एक आवली और एक समय पहले वहां तक उसका संक्रमण हो सकता है। तो उत्कृष्ट अनुभाग यानी उत्कृष्ट मैक्सिमम पॉसिबल स्पर्धक लेना है। स्थिति भले एक समय की रही है, उसमें भी सभी प्रकार के स्पर्धक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पर्धकों में से वहां अपकर्षण होगा, इसलिए वहां तक उत्कृष्ट लिया। स्थिति में तो उत्कृष्ट पहले पहले हो सकता है, बाद में तो जघन्य होता चला जाता है, ऐसे यहां नहीं है, ये बात बताना चाहते थे। आयु के अंत में एक आवली और एक समय बाकी है, तब तक उसका अपकर्षण वगैरह होगा, अनुभाग का चल रहे थे। स्थितियां तो एक 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 घटती चली गई थी, और वहां तो अंतिम स्थिति वाली है। सभी आयुओं के बारे में यही बात है। जो प्रशस्त प्रकृतियां परभविक नाम प्रकृतियों के बंद अध्योसान के अंतिम समय में बनती है, उनका बंद अध्योसान विच्छित्ति से आवली का अतिक्रांत समय को आदि लेकर अंतिम समयवर्ती संयोगी तक उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। देखो बंधाध्यवसान यानी वो बंध के कारणभूत परिणाम कौन से, जो प्रशस्त प्रकृतियां परभविक नाम प्रकृतियां, परभविक यानी आगे जो भव है उस संबंधी जो नाम प्रकृतियां बनती है, अभी जो बंधाध्यवसान है बंध के कारणभूत परिणाम है, उसके अंतिम समय में बनती है, उसका लगातार जो काल है उसके अंतिम समय में जो बंधेगी, उनका बंध अध्यवसान विच्छित्ति, बंध अध्यवसान विच्छित्ति ने वो बंध अध्यवसान समाप्त होना, उसके बाद आवली बीत जाती है, उस समय से लेकर अंतिम समयवर्ती संयोगी तक प्रशस्त प्रकृतियां है ना, तो उसका अनुभाग का संक्रम अंतिम समयवर्ती संयोगी तक उसका होता है, अनुभाग संक्रम, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। वो तो परभविक नहीं है ना, ये परभविक लिया है। हाँ वो बंदी है पूर्व काल में, देखो परभविक नाम प्रकृतियां कहां कहां बंधेगी, अपनी अपनी अलग अलग ठिकाने बंधेगी कि नहीं, जैसे साता वेदिनी कहां बंधा अंतिम 10वें के अंत में देखा हमने, उत्कृष्ट अनुभाग वाला। देवगति कहां पर बंधेगी, विच्छित्ति कहां होगी देवगति की, बंधे की विच्छित, हाँ कोई कहते हैं चौथे में, कोई कहते हैं सातवें में, हाँ आठवें में, हाँ याद नहीं आया तो आठवें में लगा देना। वो तो बहुत सारी प्रकृति है ना, 36 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है वहां पर। सातवें में देवायु, देवायु है आपको वो आयु याद थी, मुझे याद आया। हाँ देवगति है, देवगत्यानु पूर्वी आहार कहार कंगोपांग वैकिर वैकिर, हाँ देख लो देख लो। देखो पहले भाग में निद्रा और प्रसला की विच्छित्ति होती है, फिर बीच में वो तो पंचेंद्रिय जाति है, ये तीर्थंकर है, निर्माण है, प्रशस्त विहाय गति है। हाँ, फिर उसके बाद हाँ पंचेंद्रिय मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, सॉरी देवगति, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, आहारक आहारक अंगोपांग, वैकरिक वैकरिक अंगोपांग, तेजस कारमाण, समचतुरस्र संस्थान, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, अगर लघु उपघात परघात उच्छ्वास, हाँ स्थिर शुभ शुभ सुस्वर राधे, ये जो प्रकृतियां 36, और फिर ये तो हो गई बीच वाले, हाँ 30 वाले हो, और हास्य रति भय और जुगुप्सा वो सातवें भाग के अंत में विचित की होती है। इसमें से परभविक की बात यहाँ लिए, तो वहां तो उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है और उसका संक्रमण कहाँ होगा उसकी बात है। वो भले देवगति अभी उदय रूप नहीं होने वाली, फिर भी संक्रमण है ना उसमें, उसको लेना है आप। बंधावली के बाद से लेकर जहां तक है उसका, वहां तक लेना है, लास्ट समय तक, जहां उसका अपकर्षण हो सकता है वहां, या संक्रमण हो सकता है वहां तक लेना सब। जहां उत्कृष्ट बंध किया है तो वहीं पर उत्कृष्ट संक्रमण होगा। कितने स्पर्धकों में से अपकर्षण होता है उसकी बात चल रही है। 7 में है ना, 7 में लेके गया है वो, और फिर उसका देखो उसमें उत्कर्षण भी लेना, अपकर्षण जो जहां पॉसिबल है दोनों लेना। नहीं ऐसा भी हो सकता है ना, अपकर्षण भी ले सकते हैं उसमें, उत्कर्षण अपकर्षण दोनों चलते रहते हैं, 7 में पड़े पड़े दोनों भी होते रहेंगे। उदय की बात ही नहीं है, उदय की बात नहीं लेना यहाँ पर। उदय में हम निषेकों को उदय में लेते हैं, ये 7 में पड़े हैं अनुभव, भले स्थिति थोड़ी भी है क्यों ना हो, अनुभाग तो पूरा पड़ा है उसमें। ये हम जब सोचते हैं ना तो ये हम वो निषेकों की अपेक्षा, हाँ स्थिति की अपेक्षा मत सोचना, हो सकती है परंतु उससे अनुभाग कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने देखा था ना वो नरकायु के बारे में भी उन्होंने बताया, वो अंतिम समय तक उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण हो सकता है, यानी स्पर्धक जो है वो स्थितियां कितनी पड़ी है उस पर निर्भर नहीं है, अनुभाग जो स्पर्धक कितने हैं, तो वहां भी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक बहुत सारे स्पर्धक होंगे। हाँ कहीं से भी होगा, नंबर ऑफ स्पर्धक लेना उसमें, कितने स्पर्धकों में से अपकर्षण या उत्कर्षण हो रहा है उसको लेना है, उसको उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कहा। अभी हम तीसरी लाइन पढ़ते हाँ। हाँ 7 में जो कोई स्पर्धक है वो सब लेना उसमें से। हाँ उदयावली की बात यहाँ नहीं उठाई है क्योंकि उसमें भी अनुभाग का तो कुछ न कुछ संक्रमण होता ही रहता है, वैसे यहाँ उदयावली को छोड़ा है। नारकायु में तो उदयावली और एक समय, यानी उसको आवली और एक समय छोड़ा है, उसके अंतिम भव का अंतिम आवली छोड़ दी है उसमें से। हाँ फिर भी जहाँ जो योग्य है, कहीं कहीं हम निषेकों में देखते अंत समय तक था और कहीं कहीं आवली काल पहले ही रुक जाता है स्थिति संक्रमण, वैसे यहाँ भी अलग अलग प्रकृतियों के लिए अलग अलग रूल होगा। ये 378 के नीचे की 5वीं लाइन पढ़े भी, मनुष्य गति प्राज्ञानो पूर्वी, औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघात और वज्र ऋषभ सहनन का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसके होता है, वह सर्व विशुद्ध देव के द्वारा बांधे गए अनुभाग का। ये सर्व विशुद्ध देव क्यों लिया, मनुष्य क्यों नहीं लिया, मनुष्य है ना वो, मनुष्य गति का बंधे की विच्युति दूसरे में ही होती है, उसकी दूसरे गुणस्थान में, और चौथे वाला देव है वो मनुष्य गति को बांधेगा, तो इसमें उसका विशुद्धि ज्यादा वाला विशुद्धि वाला लिया देव। सर्व विशुद्धि देव के द्वारा बांधे गए अनुभाग का, क्योंकि हमको मैक्सिमम अनुभाग बांधने वाला जीव लेना था। बंधावली के पश्चात संक्रम करने वाले जीव के होता है, वह कहाँ पर होता है? वह देवों में, नारकियों में, तिर्यंचों में, मनुष्यों में, एकेंद्रियों में, द्विंद्रियों में बांधा है वहाँ पर, हुँ? और सत्ता में पड़ा है। ये उसमें से आकर मनुष्य में मनुष्य गति का उदय होना चाहिए, उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं ना। मनुष्य गति के परमाणु का उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है और उसमें जो कोई उत्कर्षण ये अपकर्षण आदि कुछ चलेगा, संक्रमण जिसको हम कहेंगे, तो एकेंद्रियों में, द्विंद्रियों में, तीन्द्रियों में, चतुरेंद्रियों में, पंचेंद्रियों में, सूक्ष्मों में, बादरों में, पर्याप्तकों में और अपर्याप्तकों में होता है, सबको लिया। उद्योत नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभव बंधावली से लेकर हाँ वही तो नारकायों में हमने देखा था कि उत्कृष्ट अनुभाग को बांधा है और बंधावली बीत चुकी है। अभी वो अभी बंधक उसका बंधक काल चल रहा है, आयु का बंधक काल चल रहा है, वो तो अंतर्मूर्त का है और आवली के बाद उसमें चालू हो गया, उसका संक्रमण शुरू हो गया। संक्रमण तो वहां से लेकर आबादा काल में भी होगा और नरक में जाने पर भी होगा, वो अंतिम आवली और एक समय बाकी है तब तक उसका अनुभाग संक्रमण चलेगा, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम। क्यों? उसने उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु बांधे हैं, वो सत्ता में पड़े हैं, तो सबके सब कम नहीं हुए हैं, उसमें से कुछ परमाणु का अनुभाग का संक्रमण होगा तो अंतिम समय तक वो रहेंगे वैसे। यहां भी वो मनुष्य गति उसने देव में बांधी है उत्कृष्ट सर्व विशुद्धि के द्वारा, बाद में और भी वो अलग अलग पर्याय में चला जाएगा तो भी वो सत्ता में पड़े हैं उसके परमाणु। हम देखें ना सर्व विशुद्धि वाले ने कोई भी संयोजन किया होगा, कुछ किया, इसे विशुद्धि कहाँ कहाँ होती है उसकी यथा योग्य। अनंत अनुबंधी के विसंयोजन भी तीन करण परिणाम में होते हैं, तो उसकी तो मनुष्य गति बंदी है वहां पर। अब 379 उद्योत नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसके होता है? सातवीं पृथ्वी में दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव के द्वारा अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जो अनुभाग बांधा गया है पहले बताते हैं उसका अनुभाग किसने बांधा है। उद्योत नाम कर्म भी एक प्रशस्त प्रकृति है, तो सातवीं पृथ्वी में दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव के अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जो अनुभाग बांधा है, बंधावली के पश्चात उसका संक्रम करने वाले के उद्योत का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है, वह कहां पर होता है? यानी बंधावली बीत जाने के बाद उसका कहीं पर भी होगा। कब शुरू होता है? तो बंधावली बीत जाने के बाद। तो कहां कहां होता है? नारकियों में, तिर्यंचों में, मनुष्यों में, एकेंद्रियों में, विकलेंद्रियों में, सूक्ष्मों में, बादरों में, पर्याप्तकों में और अपर्याप्तकों में होता है। यानी एक बार बंधने के बाद सत्ता में पड़े हैं उत्कृष्ट अनुभाग वाले, अधिक नंबर ऑफ स्पर्धक सभी पड़े हैं, तो उसका वहां अनुभाग संक्रमण कहलाएगा। हाँ, उद्योत नाम कर्म कब तक बंधेगा? दूसरे गुणस्थान में उसके विच्छित होती है ना, बंध की विच्छित दूसरे में होती है। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? सातवें नरक का लिया है, बाकी तो जीव नहीं बांधेगी ना, उद्योत का बांधेगी। चौतीस बंधाव सवर्ण के स्थानों में उद्योत का नाम है कि नहीं है? सातवें नरक का ही बांधेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी प्रायोगिक अवधि के जो 40 प्रकृतियां हमने देखी ना, उसमें उद्योत का नाम है कि नहीं है? पंच लब्धि जरा लेके आना। यानी अन्य जीवों के लिए तो तिर्यंच गति आदि जो प्रकृतियां है ना, वो प्रायोगिक लब्धि में ही बंधना रुक जाती है। प्रायोगिक लब्धि के जो बंधापसरण के प्रकृति बंधापसरण के स्थान है, याद है क्या कुछ? प्रायोगिक लब्धि में आने पर, विशेष काल बीच जाने पर, एक एक प्रकृति, जैसे वहां स्थिति बंध अपसरण होता है, स्थिति बंध घटता चला जाता है, वैसे एक एक प्रकृति का बंध भी रुकता है। जैसे नरकायु का रुका, फिर नरक गति नरकानुपूर्व, पहले तो 4 आयुओं का रुकता है, फिर नरक गति नरकानुपूर्वी, ऐसे एक एक प्रकृति वहां या समूह रूप से प्रकृतियों का बंध रुकता चला जाता है। तो उसमें तिर्यंच गति आदि की बातें, वहां उद्योत है कि नहीं देखना पड़ेगा, उद्योत होना चाहिए उसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि एक इंद्रियों के साथ वो आतप आदि उसके बंद हुई थी, परंतु साथ ओह बीच में सब हो रहा है। छपे ही नहीं पृष्ठ इसमें, इसमें ये बीच बीच में कुछ पेजेस ही नहीं छपे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें मिल जाएगा। ये प्रकृति बंधापसरण वाला जो है ना, प्रायोगिक लब्धि वाला, हाँ आगे होना चाहिए, 195 के आगे, 100 पेज में। वो तिर्यंचों के साथ लेने, देखो आतप को लिया था एक इंद्रियों के साथ, 23 नंबर पर तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूरी और उद्योत, 34 बंधापसरण स्थानों में जो 23वां स्थान है, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूरी और उद्योत, यानी सातवें नरक के नारकी के लिए कोई अलग रूल होगा ना, तो अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक उद्योत बांध रहा है। नहीं, मेरा सवाल क्या था, ये तो इन जनरल रूल है, क्या है, प्रायोगिक लब्धि में ही तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूरी और उद्योत का बंध रुक जाता है, और यहाँ किसको लिया, दर्शन मुह का उपशम करने वाले के अदब प्रवृत्त करण, यानी करण लब्धि तक को पहला करण लिया उसने, वहां उसको अनुभाग बंधा है। हाँ, मनुष्य गति की अपेक्षा तो बताया ही है, परंतु मनुष्य गति की अपेक्षा सभी नहीं स्थान, ये तो सामान्य से बताया है, उसमें से देवगति वालों को कितने स्थान होते ही नहीं वाले, ये जो मनुष्य गति का बंध वगैरह रुक जाता है, ये मनुष्यों की अपेक्षा का, देवों की अपेक्षा वो नहीं है, वैसे नारकियों की अपेक्षा भी वो कुछ अलग होगा, यानी उनके तिर्यंच गति बनती होगी वहां पर, क्योंकि तिर्यंच गति के साथ ही उसका बंध रुक जाता है। तो मार्गणाओं में कुछ अलग होती है ना प्रकृतियों की, ये तो एक होता है जनरल स्टेटमेंट सामान्य से। बाद में नहीं नहीं, हमने जो प्रकृति बंधापसरण के स्थान देखे थे, 34 स्थान और 40 प्रकृतियों का बंध रुकता है, वो तो उपशम काल के बाद फिर शुरू हो जाए। वो तो मनुष्यों के लिए कौन कौन सी फिर शुरू होगी उसकी बात है, मनुष्य तो बांधेगी नहीं मनुष्य गति, फिर वो तो सम्यक्त्व ही प्राप्त करेंगे, और सम्यक्त्व में से मान लेते दूसरे में आएंगे तो ही मनुष्य गति बांधेंगे फिर, परंतु देव है वो तो मनुष्य गति बांधेंगे, उस काल में भी बांधेंगे, नहीं समझे? देव जो सम्यक दृष्टि है उनके प्रायोगिक लब्धि में मनुष्य गति आदि जो हमने स्थान देखे थे, मनुष्य गति भी बंधना रुक जाती है, वो मनुष्यों के लिए मनुष्य गति बंधना रुक जाती है, देवों के लिए तो मनुष्य गति बंधना चालू रहती है, वैसे यहाँ पर नारकियों के लिए, स्पेशली सातवें नरक के नारकियों के लिए कुछ तिर्यंच गति बनती होगी वहां तक, इसके लिए लिया। देखो 379 पर तो उसने अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग कहां पर बांधा उसकी बात बताए। बंधावली के पश्चात उसका संक्रम करने वाले के उद्योग का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है, वह कहां पर होता है वो भी हमने पढ़ा है, नारकियों में, तिर्यंच मनुष्यों में, एक केंद्रीय, विकलेंद्रीय, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, पर्याप्त। अब आगे नरक गति में सातावेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसके होता है? अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के द्वारा जो अनुभाग बांधा गया है उसका घात न करके जो अन्यतर पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है उसके सातावेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। अन्यतर पृथ्वी का अर्थ क्या होता है? किसी भी पृथ्वी में, किसी भी नरक में, अन्यतर पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का एकों की बात नहीं है, नारकी में, पृथ्वी में नहीं, नरक में किसकी बात है? उसने अनुभाग वहां बांधा है, अब वो सत्ता में पड़ा है, नहीं परंतु अंतिम समय में बांधा है, उपशामक लिया है, उपशामक लिया है, क्योंकि क्षपक का कोई नीचे आने का सवाल नहीं है। नरक गति में वो जीव कालांतर में नरक में गया है, बाद में गया है, उपशामक तो अभी मर के जय होगा जो कुछ होगा, क्योंकि जो उपशामक है ना, मुनि हुए हैं, वो तो देव में ही जाएंगे। कभी कभी ऐसे थे ना, फिर मित्यात्व में जाएंगे, फिर आयु बांधेंगे, तो क्या सवाल है, तो कहीं पर भी जा सकते। आयु का बंद किया हो अन्य आयुओं का तो नहीं जा सकते, हाँ मुनि नहीं होंगे, परंतु बाद में भी हमने देखा ना कितने भावलिंगी संत, पूरे पूर्व कोटि तक तो भावलिंगी रहे, बाद में मिथ्या तो में गए, बाद में आयु बांधी, फिर वो कहीं पर सूक्ष्म भी चले गए। तो ऐसा जीव लेना यहाँ पर, यानी बांधे है तो अनुभाग वहां पड़ा है सत्ता में, अब उसको क्या ना, उसका घात न करके बात बताया है, यानी ऐसे कोई अनुभाग, यानी उत्कृष्ट अनुभाग वाला है सत्ता में, अभी उसका घात नहीं हुआ है, और जो अन्यतर पृथ्वी में ने किसी भी नरक में, उत्पन्न होने वाला है उसके सातावेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। नरक गति में किसको होता है ऐसा प्रश्न पूछा था, तो नरक गति में आने के पहले उत्कृष्ट अनुभाग बांधा था और वो सत्ता में पड़ा है, उसका घात नहीं हुआ है, ऐसा लिया। इसी प्रकार से सर्वत्र प्ररूपणा करना चाहिए, इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। यानी क्या, जहां कहीं भी उत्कृष्ट अनुभाग बनता है, बंधावली बीत जाने पर उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम होता है। यहाँ जघन्य अनुभाग संक्रम के स्वामित्व का कथन किया जाता है। कषायों का क्षपण करने वाले जीव के जब तक वह अंतर नहीं करता तब तक यह अंतर कहां पर करता है? अनिवृत्तिकरण में कषायों का, यानी किसका? चारित्र मोहनीय का। उपशम श्रेणी को क्यों लिया? क्षपक में अंतर होता है कि नहीं होता? क्षपणा होती है, उसमें वो सारी कृष्टि, संग्रह कृष्टि वगैरह बनती है, 12 प्रकार की संग्रह कृष्टि बनती है, यहाँ तो कहते हैं कषायों का क्षपण करने वाले जीव के, क्षपण क्यों कहा फिर? ये उसमें भी अंतर करके फिर बाद में नीचे उदय रूप होता है, क्या होता है? अंतर नहीं होता है वहां पर ना, जब तक वह अंतर नहीं करता है तब तक अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग सत्कर्म सूक्ष्म एकेंद्रिय के सत्कर्म से अधिक होता है, किंतु अंतर करने पर वही सूक्ष्म एकेंद्रिय के सत्कर्म से नीचे होता है। क्या कहना चाहते हैं? अनुभाग की अपेक्षा बात है, अनुभाग कितना होता है? तो पहले में पहले अंतर करने के पहले क्या होता है? अनुभाग सत्कर्म ने सत्ता में पड़े हुए स्पर्धक अनुभाग की अपेक्षा है तो जघन्य, फिर भी एकेंद्रियों से भी ज्यादा है, और अंतर करने के बाद उसका अनुभाग इतना घट गया है कि सूक्ष्म एकेंद्रियों से भी अनुभाग सत्कर्म जो है वो घट जाता है, उससे भी कम होता है। इस बीज पद के अनुसार जघन्य स्वामित्व को करना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां अंतर करके नीचे नीचे उसकी रचना होती है, क्या होता है जरा क्षपणा सार में देखना पड़ेगा, अंतर करता है कि नहीं करता। चारित्र मोह की क्षपणा में कषायों का क्षपण करने वाले कक्षेपण कसाय खवेंतस्स, कसाय नीचे क्या पाठ है? सामितम कस्स कसाय, अंतरम अकथम अंतरम कदम। हाँ, क्षपणासार वो पेपर का कवर है उसका, न्यूज़पेपर का कवर पीछे हो, पीछे के लाइन में नौवा गुण स्थान 150 पेजेस का है। हाँ, जब तक नहीं करता है ऐसा वहां लिखा है ना, इसके अनुक्रमणिका किधर है? शायिक सम्यक चारित्र लब्धि चारित्र उपशर्म क्षपणासार कषाय क्षपणा प्रारंभ 328। इसमें भी अंतर होगा मेरे ख्याल से। अंतर करता है इसमें भी, देखो पहले वो देशघातीकरण करता है यानी द्विस्थान वगैरह वो उसके अनुभाग कम करता है, उसको देशघातीकरण कहा था, बाद में अंतरकरण करता है। उसमें चार संज्वलन और नौ कषाय इनका अंतर करता है, अन्य का अंतर नहीं करता है। यानी नीचे नीचे वो जो क्षेपण होते हैं उसमें और हाँ उसकी गुणश्रेणी वगैरह होता रहता है, और फिर संक्रमण होता है एक का दूसरे में दूसरे। हाँ, अंतर ऊपर के परमाणु नीचे नीचे आते हैं और अलग अलग उसके जो कृष्टियां तैयार होती है उसमें से। अभी उसका अपना विषय नहीं है, उसके बाद वो अश्वकर्ण वगैरह वगैरह होता है। उसके बाद वो स्पर्धक जघन्य स्पर्धक कृष्टि वगैरह वो उसके पश्चात होता है सर्व, अंतर वहां भी होता है। इसलिए कहा जब तक वह अंतर नहीं करता, क्योंकि अंतर करने के बाद उसका कुछ प्रोसेस जो क्योंकि वहां तो और अनुभव घटता है ना, तो जो आदि निषेक था उससे भी बहुत कम हो जाएगा। संसार अवस्था में जो पूर्व स्पर्धक थे उससे भी अत्यंत ही नहीं से वहां अनुभव हो जाते हैं, इसलिए वहां घटते चले जाते। हमने ये पढ़ा ना, ऐसा जघन्य स्वामित्व को करना चाहिए। अब नीचे से तीसरी लाइन, 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण और 5 अंतराय के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? जो इनकी जघन्य स्थिति का संक्रामक है, बोलो अभी कौन है, वही उनके जघन्य अनुभाग के भी संक्रामक होता है। 12वें के अंत में आवली और एक समय बाकी है तब। इसी प्रकार सम्यक और संज्वलन लोभ के संबंध में कहना चाहिए। सम्यक्त्व का भी जघन्य स्थिति संक्रामक कौन होता है? हाँ, क्षायिक होने जा रहा है कृतकृत्य वेदक में, अंतर्मूर्त वाला है, उसमें से आवली और एक समय बाकी, उस पोजीशन पर समझना उसको भी। संज्वलन लोभ का 10वें के अंत में लेना। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? जिसने हत समुत्पत्तिक कर्म को किया है, ऐसा सूक्ष्म एकेंद्रिय। हत समुत्पत्तिक याद है, हत यानी घात, जिसने वो घात होता है ना, स्थितियों का भी घात होता है और अनुभाग का भी घात होता है एकेंद्रियों में जाने पर। तो ऐसा जो हत समुत्पत्तिक कर्म को किया है, ऐसा सूक्ष्म एकेंद्रिय, अन्यतर एकेंद्रिय यानी अन्य भी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, उनके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। यानी जिसने वो घात किया है और अनुभागहीन किया है उसका, वो तब स्पर्धकों की संख्या कम है, उसके अनुभाग कम हुआ है और फिर वो जघन्य अनुभाग का संक्रामक होगा। इसका कारण यह है कि जघन्य अनुभाग के साथ सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव की उत्पत्ति द्विंद्रिय आदि जीवों में संभव है। यानी हत समुत्पत्तिक लेना, हत समुत्पत्तिक सूक्ष्म एकेंद्रीय घात ज्यादा से ज्यादा किया, यानी वो तो कम से कम उसका अनुभाग है, अब वो कम से कम अनुभाग के सहित अन्य जीवों में उत्पन्न हुआ है, ऐसा जीव लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अनुभाग ज्यादा कहाँ है वहां पर, कहाँ, ये निद्रा निद्रा की बात चल रही है। हाँ, सत्ता की विच्युति वहां होती है। हाँ, वहां अनुभाग का कम जो होगा, तो वहां तो अभी हमने अंतर करने वाले के अनुभाग की बात की थी वहां पर, परंतु वहां तो उसका क्षय कर देता है ना वो। हाँ, उस पोजीशन पे इसका भी कम होगा शायद, तभी तो हत समुत्पत्तिक लिया। हाँ, क्योंकि वो भले कम है परंतु एकेंद्रियों में जो मिनिमम पॉसिबल है उसको यहाँ पर लिया है, और ऐसा करने के बाद वो अन्य जीवों में उत्पन्न हुआ, द्विंद्रिय आदि में, पंचेंद्रिय तक के, यानी अनुभाग मिनिमम करके अभी वहाँ उत्पन्न हुआ है, ऐसा जीव लिया उसमें। ये अनुभाग का संक्रामक में उसमें उत्कर्षण भी ले सकते हैं ना हम, कि नहीं? हाँ, पर जघन्य में जघन्य चाहिए, वो जघन्य का चाहिए, मिनिमम पॉसिबल है उसका संक्रामक होना चाहिए। फिर संक्रामक उत्कर्षण अपकर्षण सब ले सकते हैं ना उसमें। सम्यक दृष्टि जीव प्रशस्त कर्मों के अनुभाग का घात नहीं करता है। हमने तो देखा ना, प्रशस्त कर्मों में तो उल्टा वो बढ़ता है। भवोपगृहित अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग सत्कर्म, जिन भगवान में वर्तमान होकर भी असंगी के सत्कर्म से अनंत गुणा होता है। भवोपगृहित, भवो में उपग्रहित यानी धारण किया, प्राप्त किया हुआ वो प्रशस्त कर्मों का जो अनुभाग सत्कर्म है, असंगी के सत्कर्म से अनंत गुणा होता है। ये उसकी की बात कर रहे हैं, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग सत्कर्म। आपने जो पूछा था ना अभी, यहाँ तो उसका तो क्षय होने वाले की बात छोड़ दो, जिन अप्रशस्तों का क्षय नहीं हुआ है, ऐसे जो कर्म अप्रशस्त पड़े हैं सत्ता में, तो असंगी जीवों में जितना अनुभाग संभव है उससे भी अनंत गुना उनके पॉसिबल है। इसलिए आगे की बात है ना, इस कारण सातावेदनीय असातावेदनीय अनादि सत्कर्मिक नाम कर्म प्रकृतियां और नीच गोत्र को, नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग संक्रम हत समुत्पत्तिक सत्कर्मिक होकर जघन्य सत्कर्म से नीचे बांधने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के होता है। आपने पूछा ना ऊपर क्यों नहीं लिया, उसका अनुभाग तो गढ़ गया है परंतु उसका संक्रमण वो जो सत्कर्म ऑलरेडी है नहीं, उसने सत्ता को घटाया, सत्ता को घटाया, उसको हत समुत्पत्ति कहा और उससे भी छोटा बंध किया या बंधने में फिर ले लिया उसको, तो उसमें बंधने में जो कुछ उत्कर्षण होकर उसमें चले जाएंगे उसको भी ले सकते हैं ना, बंधावली के बाद शुरू होता है उसमें। तो इसके ज्यादा सत्ता वाले ज्यादा अनुभाग वाले तो नहीं होंगे, परंतु उससे कम अनुभाग वालों का उत्कर्षण होगा, उसकी अपेक्षा जघन्य लेना है, जघन्य में जघन्य अनुभाग का संक्रमण लेना है, उसको यहाँ लिया है। आपका प्रश्न था नवे में क्षय होता है तो अनुभाग घटता है, परंतु यहाँ इसने हत समुत्पत्ति यानी घात के द्वारा इतना कम किया है और फिर उससे भी कम बंद करता है, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेंद्रियों को उस स्थान पर लिया। एकेंद्रिय को आदि लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों में भी इनके जघन्य अनुभाग का संक्रम होता है, क्योंकि जघन्य अनुभाग सत्कर्मिक सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव की जघन्य अनुभाग के साथ द्विंद्रिय आदि जीवों में उत्पत्ति देखी जाती है, यानी उन्होंने अनुभाग का जो घात किया है उतने ही वो घात सहित अनुभाग सहित निषेकों में तो कितने ही खिर जाते हैं, ये अनुभाग में तो सर्वत्र पड़े हैं ना सत्ता में, तो ऐसे ही जघन्य अनुभाग के साथ हाँ वो द्विंद्रिया में उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व और आठ कषायों का भी जघन्य अनुभाग संक्रम हत समुत्पत्ति कर्म को करने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव के ही होता है। देखो सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है, जो सम्यक मिथ्यात्व का क्षपक अंतिम अनुभाग कांडक में वर्तमान है वो उसके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। सम्यक मिथ्यात्व का क्षपक कहाँ पर होगा, हाँ जिसको हम कहते हैं ना क्षयिक समय दृष्टि होने जा रहा है, पहले मिथ्यात्व का क्षपण ने उसको कर दिया, क्षय कर दिया, अब सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करते करते क्षय किए ने क्या है, सम्यक प्रकृति रूप होते रहते हैं, वो अंतिम कांडक की अंतिम फाली वह उसका अनुभाग मिनिमम होगा और वो टर्न होकर सम्यक प्रकृति हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अनुभाग संक्रम, जघन्य अनुभाग संक्रम। पुरुष वेद और तीन संज्वलन कषायों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है, जो इन प्रकृतियों का क्षपक इन्हीं के अंतिम समय प्रबद्धों की अंतिम फालियों का क्षेपण कर रहा हो वह उनके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। क्या कहते हैं, अंतिम समय प्रबद्धों की अंतिम फालियां, ये नवक समय प्रबद्ध भी लेना ना उसमें, हाँ क्योंकि उसका उदय तो रुक गया है, नया बंध भी रुक गया है और जो अंतिम आवली में बंधे हुए जो है बंधावले की पश्चात उसका संक्रमण होगा, यानी जब इसका उदय तो मिट गया है बंध भी मिट गया है, अभी क्रोध के बदले मान का उदय चालू हो गया है, तो वो जो सारे नए बंध वाले हैं वो मान में ट्रांसफर हो गए तो उसका अनुभाग मिनिमम है वहां बंधा हुआ, इसलिए अंतिम समय प्रबद्ध का लिया। विशेष इतना है कि पुरुष वेद का संक्रामक पुल्लिंग से उपस्थित हुआ जीव होता है ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि पुरुष वेद का जो है ना नवक समय, उसका पुरुष वेद का ही वो बंद कर रहा है और पुरुष वेद का उदय अधिक समय तक है। नपुसक वेद या स्त्री वेद के साथ चढ़ने वाले का पहले रुकता है उसका, हाँ उसका सवेद काल जो होता है। नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? नपुसक वेद का क्षपक। जो जीव नपुसक वेद के उदय के साथ ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर नपुसक वेद की अंतिम पाली का क्षेपण कर रहा हो वह उसके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? जो स्त्री वेद का क्षपक जीव अन्यतर वेदोदय के साथ नपुसक वाले के तो नपुसक वेद का उदय के साथ लिया और स्त्री वेद का क्षपक अन्यतर वेदोदय के साथ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर स्त्री वेद के अंतिम अनुभाग कांडक की अंतिम फाली का क्षेपण कर रहा हो वह स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। क्या कहते हैं? ये तो जो उदय कोई भी हो, अभी उसके तो क्षय करना है ना, प्रकृति सत्ता में रहने से कुछ नहीं बनेगा, तो पुरुष वेद की सत्ता के साथ भी चढ़ रहा है, पुरुष वेद के उदय के साथ चढ़ रहा है, उसके सत्ता में जो स्त्री वेद के परमाणु है उसका वो क्षपणा करता है ना, वो संक्रमण हो जाते हैं उसके, इसलिए उसको लिया उसको। अन्यतर वेदोदय उसके किसी भी वेद के साथ चढ़ रहा है वो। हाँ, छह नौकषायों के जघन्य अनुभाग संक्रामक की प्ररूपणा स्त्री वेद के समान है। संक्रामक स के ऊपर बिंदी नहीं दिख रही। माया का जघन्य नौवे में ही होगा। नहीं, नौवे में रुकता है। कब रुकता है? माया बंधक काल तो पहले होता है, बाद में बादर लोप का उदय चल रहा है ना, वहां पर नवे में ही अकेला लोप का बंद रह जाता है अंत में, तब वो सारे के सारे लोभ रूप हो गए हैं। तो माया बंधक काल के पश्चात एक आवली के बाद वो जो अंतिम वहां समय प्रबद्ध वो ट्रांसफर हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। हाँ, वो उदय रूप है कि नहीं उसकी बात नहीं, क्षय की बात चल रही ना, क्षपण करने वाला जीव है। हाँ, यहाँ पर वैसा नहीं, वेदों में तो कुछ रूल अलग से बनते हैं। चार आयु कर्मों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? अपनी अपनी जघन्य स्थितियों को रचकर बंधावली को बिताने वाला जीव उनके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अब यहाँ स्थितियों की अपेक्षा ली उन्होंने। हाँ हाँ, बंधावली के बाद जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अनंतानुबंधी कषायों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? विसंयोजना करके जो जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय वर्तमान है वह उनके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। क्या कहना चाहते हैं? विसंयोजना करके विसंजो ए दूण जघन्य परिणाम परम समय संयुक्तो प्रथम समय कहा अनुभाग का संक्रामक होता है। प्रथम समय में बंधा अनुभाग बांधा है, पर बांधा है तो बंधावली के बाद तो नहीं होगा संक्रमण, देखो विसंयोजना करके जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय में वर्तमान है। कैसा लेना इसको, अभी उसके सत्ता में है ही नहीं ना। मिथ्यात्व में गया कहाँ लिखा है? प्रथम समय में उसकी सत्ता, प्रथम समय में तो जो बंद होगा प्रथम समय में, आवली कहाँ बीत गई है? जघन्य परिणाम विसंयोजना करके जो जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय वर्तमान है, जघन्य अनुभाग का संकरण, वो अंतिम समय लेना चाहिए था उसका विसंयोजना का। यहाँ नीचे नहीं लिया ना, अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी नम जघन्य अनुभाग संकामों को विसंजोएदून जघन्य परिणामेन परम समय संयुक्तो। जघन्य परिणाम कौन सा लेना है अभी? मिथ्यात्व में जाने के बाद ही लेना पड़ेगा ना? पर वो पहला समय नहीं लेना। विसंयोजना करके जो जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय वर्तमान है, ये ख्याल नहीं आ रहा है। जघन्य परिणाम से संयुक्त कहां पर बता रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था ना उसका स्थिति का, जघन्य स्थिति का संक्रामक कौन है, तो विसंयोजना करने वाले के अंतिम फाली वाला लिया था। विसंयोजना करता है ना, तो जितने अनंतानुबंधी है उसके एक एक फाली रूप से वो तो होता रहता है, तो अंतिम फाली को लिया था। हाँ, विशुद्धि ज्यादा है, यानी ज्यादा विशुद्धि के बाद जो जघन्य परिणाम होगा तब। परंतु वहां उसका अनंतानुबंधी है ही नहीं, उसका संक्रामक कैसे कहलाएगा? अब आगे पढ़ेंगे। नरक गति नाम कर्म के, गति नाम कर्म का जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? सर्वप्रथम संयोजन करने वाला जीव उसके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अब ये संयोजन क्या है? संजोए माने मानो, जैसे नरक गति के जघन्य अनुभाग संक्रामक का कथन किया है, वैसे उद्वेल्यमान सभी नाम प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का कथन करना चाहिए। उच्च गोत्र का जघन्य अनुभाग का संक्रामक कौन होता है? सर्वप्रथम संयोजन करने वाला जीव उसका संक्रामक होता है। जघन्य अनुभाग की बात चल रही ना, उद्वेलना की बात है। मेरे ख्याल से उद्वेलना के बाद जब बांधने वाला वो जीव लेना है। संयोजन का अर्थ क्या है? नरक गति में संयोजन। जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। नरक गति में संयोजन, नरक गति का संयोजन करना वाला है ना। नरक गति नाम कर्म का अनुभाग का संक्रामक कौन है? तो संयोजन करने वाला जीव। चलो ये नहीं समझ में आया। ये नीचे कुछ है क्या? साइन उच्चा को दस संजोजे मानव, उसको पढ़ेंगे जरा। संजोजे मानव क्या लिखा है? ये संयोजन करने वाला उच्च गोत्र का सर्वप्रथम संयोजन करने वाला, उसके बाद नीचे लिखे फुटनोट में, आऊण जहन्न ठी बंदिय जावत थी संकमो ताव उवलन तित्त संजोयना य पड़मावलियम गंतुम। उवलन तित्त संजोयना तथा नरकद्विक मनुजद्विक वैक्रेक सप्तक आहार सप्तक उच्चैर गोत्र लक्षणा में लक्षणम एक विंशति उद्वेलन प्रकृतिनाम तीर्थंकरस्य अनंतानुबंधीनाम च जघन्यमनुभागं बद्ध्वा प्रथमावलिकां बंधावलिका लक्षणां गत्वा अतिक्रम्य बंधावलिकायाः परतः इति अर्थः। जघन्यमनुभागं संक्रमयति, ये सब वहां लिखा है। यानी अनंतानुबंधी का भी ऐसा लेना ना कि उसको बांध कर, जघन्य अनुभाग बांध कर आवली काल बिताने पर। हाँ, यानी अनंतानुबंधी में ऐसा लेना, विसंयोजना कर ली, अभी कोई सत्ता में नहीं है। फिर उसने जघन्य बंध किया मिथ्यात्व में जाकर, एक आवली बिताया, जघन्य बंध के बाद एक आवली बिताई, उसके बाद उसका जघन्य अनुभाग संक्रम हो। हाँ, बंधावली के बाद ही होता है उसका भी। नहीं नहीं उसका भी बंधावली के बाद ही शुरू होता है, हमने पढ़ा था। अनुभाग का संक्रम जो है वो भी बंधावली के बाद होता है, उसमें भी अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति की भी बात है। हाँ, संक्रमण की बात है। जघन्य अनुभाग का संक्रमण ने जघन्य बंध किया, जघन्य अनुभाग का बंध किया है, यानी मिनिमम पॉसिबल स्पर्धक है उसमें से उसका उत्कर्षण अपकर्षण जो होता है उसकी बात है। यहाँ पर उदय की बात नहीं लेना यहाँ पर। यानी नरक द्विक में भी ऐसा ही समझना, अभी उसने उद्वेलना कर लिए, बाद में जघन्य अनुभाग बांधा, एक आवली बीत गई और फिर उसका जघन्य अनुभाग संक्रमण होगा। अनंतानुबंधी में तो भी संयोजन लिया और अन्य प्रकृतियों में उद्वेलन लिया। यानी जब फिर से बांधेगा तो जघन्य अनुभाग से जब बांधेगा और उसके आवली बीत आवली आवली बीत गई और फिर उसके बाद लेना उसको। कह संक्रमयति इति चेद उच्चते, ये यही फुटनोट ही पढ़ रहे हम। वैकिरिक सप्तक देवद्विक नरकद्विकानाम असंगी पंचेन्द्रिय मनुष्य द्विको द्विक उच्च गोत्रयो हो सूक्ष्म निगोधा आहार सप्तकस्य अप्रमत्तः। ये किसका कहाँ कहाँ होता है संक्रमण उसको कहते हैं, ये जघन्य संक्रमण कहता है ना वो कहाँ होता है तो बताया। वैक्रियक सप्तक देवद्विक नरकद्विक इनका असंगी पंचेंद्रिय, मनुष्यद्विक और उच्च गोत्रों का सूक्ष्म निगोध, आहार सप्तक का अप्रमत्त, तीर्थकरस्य अविरत समय दृष्टि, अनंतानुबंधी नाम पश्चात्कृत सम्यक्त्व, मिथ्या दृष्टि संक्रमयति इति। और अनंतानुबंधी का जो है वो पश्चात दोबारा जब समय को प्राप्त किया तभी होगा या मिथ्या दृष्टि का उसका संक्रमण होगा। अब ये काल की प्ररूपण हम कल देखेंगे। यहाँ तो लिखा ना इस प्रकार स्वामित्व की प्ररूपणा समाप्त हुई। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो खालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।